मित्रों, मैं हूं कुमुद मिरानी और आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी कार्यक्रम SBS रेडियो पर लौटते परिंदे। मित्रों, आप सभी को एक बार फिर बैसाखी, बिहू, पोंगल, लोहड़ी सभी त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं हों। लेकिन क्या आपको याद है कि 96 वर्ष बीत गए और हर वर्ष हम भारतीय, चाहे भारत में रहते हों या विदेशों में, एक बार उस काले दिन को याद कर लेते हैं और श्रद्धांजलि दे देते हैं उन लोगों को और फिर भूल जाते हैं उन्हें। हाँ, भारत के ऐतिहासिक स्थलों को देखने की जब बात सोचते हैं तो एक बार वहां भी चले जाते हैं, अपनी तस्वीरें, परिजनों की तस्वीरें खींचकर एल्बम में सजा ही देते हैं, मगर फिर भूल जाते हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में हम उन तमाम लोगों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को भूलते जा रहे हैं, उनके जीवित वंशजों को अनदेखा कर जाते हैं, जिनके पुरखों, पूर्वजों के त्याग, बलिदान और शहादत पर ही आज भारतवर्ष टिका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कह रही हैं कुमुद? लेकिन दोस्तों, कल बैसाखी थी, कल ही तो अप्रैल 13 थी, और क्या आपको याद है कि कल ही तो हजारों निहत्थे पुरुष, महिला, बच्चे सभी जलियांवाला बाग में लहूलुहान हो गए थे। मैं बात कर रही हूं जलियांवाला बाग नरसंहार की। कल यानी बैसाखी के दिन 96 वर्ष उस हादसे को पूरे हो गए। आज भी उस दिन की कल्पना करती हूं तो रोंगटे कांपने लगते हैं। लेकिन हमें फख्र है कि हमारे भारत के संवाददाता शिवनाथ झा अपने प्रयास से और हम अपने रेडियो प्रसारण के माध्यम से जलियांवाला बाग नरसंहार के मुख्य अभियुक्त जनरल ओडवायर को मौत की घाट उतारने वाले उद्धम सिंह, जिन्हें बाद में फांसी पर भी चढ़ाया गया था, उनके वंशज को उनके जीवन के अंतिम वसंत में एक नई जिंदगी देने में कामयाब रहे हैं। इस कहानी को भेजा है हमारे भारत के संवाददाता शिवनाथ झा ने। अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमने बात की है शहीद उद्धम सिंह के वंशज जग्गा सिंह के साथ। जग्गा सिंह जीत सिंह के बेटे हैं और जग्गा सिंह जी शहीद उद्धम सिंह की बहन की तरफ से उनके पोते लगते हैं। जीत सिंह दैनिक मजदूरी का काम करते थे, लोहा लकड़ उठाया करते थे। उन्हें 120 रुपये रोज मिलते थे अपने घर को चलाने के लिए। हम बातें करेंगे श्री जग्गा सिंह के साथ, जो उनके बेटे हैं, और देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं इन दिनों। हमारा ये कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, और इसके बारे में अगर कोई टिप्पणी छोड़ना चाहे तो बेशक हमें लिखने में कोई कोताही न करिएगा। क्या खूब किसी ने कहा है कि उनकी तुर्बत पे एक भी नहीं दिया, उनकी तुर्बत पे एक भी नहीं दिया, जो सींचा करते थे लहू से चरागे वतन। जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। जग्गा सिंह की बात तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन आइए पहले जलियांवाला बाग के बारे में आपको कुछ जानकारी दें और बताएं कि कैसे शहीद आजम उद्धम सिंह ने माइकल ओडवायर को ब्रिटेन में आकर मार दिया था और फिर इस प्रकरण के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपको याद दिला दूं कि 20 फरवरी 2013 के साल में भारत के दौरे पर आए हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अमृतसर के जलियांवाला बाग भी गए थे। वहां रखी गई विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा था, कोट, "दिस वॉज अ डीपली शेमफुल इवेंट इन द ब्रिटिश हिस्ट्री एंड वन दैट विंस्टन चर्चिल राइटली डिक्लेयर्ड एट द टाइम as monstrous. We must never forget what happened here. And in remembering, we must ensure that the United Kingdom stands up for the right of peaceful protest around the world." Unquote. बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी हजारों लोग सभा की खबर सुनकर वहां पहुंच गए। जब नेता लोग भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान ही मकान थे। भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद पड़े और देखते ही देखते वहां कुआं भी लाशों से भर गया। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही निकाले गए। शहर में कर्फ्यू लगा था जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया। मरने वालों की सूची में 484 नाम आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन अनाधिकारिक अनऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग जलियांवाला बाग में मारे गए थे। कहा जाता है कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया है, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूं। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की जिसे वाइस रॉय लॉर्ड शेम्सफर्ड ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि पंजाब के एक पिछड़े इलाके में पैदा हुए भारत के एक वीर सपूत का, जिसके सर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, वो उस हादसे का, उस नरसंहार का चश्मदीद गवाह था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला नरसंहार। 20 वर्ष इंतजार करने के बाद उस नरसंहार के मुख्य अभियुक्त को उसी के घर में मार कर ढेर कर दिया उस क्रांतिवीर ने, और उनका नाम है सरदार उधम सिंह। शहीद आजम उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उधम सिंह की माता और पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और 1907 में उनके पिता भी चल बसे। उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी थी। सन 1917 में उनके भाई का भी निधन हो गया। उधम सिंह इन सब घटनाओं से बहुत ही दुखी तो थे ही, लेकिन उनकी हिम्मत और संघर्ष करने की ताकत और भी बढ़ती चली गई। उन्होंने शिक्षा जारी रखने के साथ ही आजादी की लड़ाई में कूदने का भी मन बना लिया था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन को ऐसे घाव दिए जिन्हें ब्रिटिश शासक बहुत दिनों तक नहीं भूल पाए। शहीद आजम उधम सिंह सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार ने उधम सिंह को हिलाकर रख दिया और उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठान ली। उधम सिंह इस घटना के लिए जनरल माइकल ओ ड्वायर को जिम्मेवार मान रहे थे, जो उस समय पंजाब प्रांत के गवर्नर थे। गवर्नर के आदेश पर जनरल रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने गोलियां चलवाई थीं। इसके बाद उधम सिंह ने शपथ ली कि वो माइकल ओ डायर को मारकर इस घटना का बदला लेंगे, यानी कि गवर्नर को मारकर ही इस कांड का वो बदला लेंगे। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने अलग अलग नामों से अफ्रीका, नायरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्राएं की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत का ये वीर क्रांतिकारी माइकल ओ ड्वायर को ठिकाना लगाने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी, जहां माइकल ओ ड्वायर भी वक्ताओं में से एक थे। उधम सिंह उस दिन समय से पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी सी किताब में छुपा ली। उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में इस तरह से काट लिया जिसमें ओ ड्वायर की जान लेने वाले हथियार को आसानी से छुपा दिया गया। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर पर गोलियां चला दी। दो गोलियां ओ ड्वायर को लगी जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। गोलाबारी में ओ ड्वायर के दो अन्य साथी भी घायल हो गए। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब उनसे सवाल किया गया कि वो ओ ड्वायर के साथियों को भी मार सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इस पर उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। अपने बयान में उधम सिंह ने कहा, मैंने ओ ड्वायर को मारा क्योंकि वो इसी के लायक था। मैंने ब्रिटिश राज्य में अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मुझे मरने का कोई डर नहीं है। देश के लिए कुछ करके जवानी में ही मरना चाहिए। ये थे शहीद आजम उधम सिंह। 4 जून 1940 को उधम सिंह को ओ ड्वायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। इस प्रकार ये क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए थे। उधम सिंह की अस्थियां सम्मान के साथ भारत लाई गईं। उनके गांव में उनकी समाधि बनी हुई है। आइए अब सुनते हैं कि क्या कहते हैं शहीद आजम उधम सिंह के पोते श्री जग्गा सिंह। तो आइए दोस्तों, अब हम बातें करते हैं शहीद आजम उधम सिंह जी के पोते जग्गा सिंह जी के साथ। नमस्कार जग्गा सिंह जी, सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल जी।
ये बताइए कि आपका शहीद आजम उधम सिंह के साथ क्या रिश्ता है?
मैं शहीद सिंह जी पहना आस कोर दा पोता हां जी।
पोते हैं उनके?
हां जी हां जी।
अच्छा, तो ये बताइए कि जग्गा सिंह साहब, आपके परिवार में अक्सर शहीद उधम सिंह की चर्चा होती होगी, तो क्या क्या बातें आप सुनते आए हैं बचपन से अब तक?
बात तो ये सुन रहे हैं जी, क्योंकि शहीद उधम सिंह पंजाब का था, सुनाम का था, सुनाम में उनका जन्म हुआ है। लेकिन अगर हम पंजाब से बाहर जाते वहाँ तो लोग हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आप उस परिवार से हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। तो पंजाब की बात की जाए, बड़ी शर्म की बात है कि पंजाब का ही वो शहीद है, पंजाब में ही उसका कोई इतना नाम नहीं है।
तो उनके बारे में, जीवन के बारे में परिवार के लोग क्या क्या बताते हैं आपको कि कैसे थे वो?
उसके बारे में तो यही जो मुझे पता है जी, क्योंकि मैं तो पहले था ही नहीं जब वो है सर जहाँ पे आए थे। उसके बाद तो ये है मैडम, जब भी उनको कोई ना कोई उनके मन में कि मैंने ये काम करना है, वो वही रूप धारण कर लेते थे। बहुत तौर पे उन्होंने कोई अफसर बन जाना या पुलिस वाला बन जाना, कभी पुलिस वाली टोपी ले ली, मतलब शुरू से ही बचपन से ही उनके यही शौक थे।
अच्छा जी, ये बताइए कि उन्होंने शादी की थी क्या?
नहीं जी, उन्होंने कोई शादी नहीं की थी। आपने फिल्म भी देखी होगी शहीद उधम सिंह, क्योंकि फिल्म में हम देखते हैं उसमें कुछ परसेंट सच्चाई भी होती है। इसमें क्या था, उन्होंने सिर्फ एक वहां पे जगह लेने के लिए एक दोस्ती लगा लो, मतलब मगर शादी वगैरह उन्होंने कोई नहीं की जी।
तो आप उनके पोते किस तरह से हुए, यानी उनके भाई के बेटे के बेटे हैं?
नहीं, हम उनकी बहन के परिवार से हैं जी, उनकी बहन थी आस कौर।
अच्छा, अब ये बताइए कि क्या आज भी देश में उन्हें याद किया जाता है, पंजाब में और दूसरे भागों में?
हाँ जी, दूसरे भागों में तो बहुत ज्यादा याद किया जाता है। रही गल पंजाब की, पंजाब में ऐसा होता है कि जैसे 30 जुलाई को उनका शहादत दिवस आता है, तो उसमें ही मतलब जैसे यहाँ पे उनकी जब अस्थियां रखी हुई है, वो स्मारक बनी हुई है, या उनके बुत वगैरह जहाँ में पंजाब में सुनाम में बहुत है जी, वहां पे क्या होता है, जिस दिन मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने आते हैं, तभी जहाँ पे थोड़ी मोटी कली वगैरह जाती है, सफाई होती है, लेकिन उसके अलावा जहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
ये बताइए कि आपके पिताजी जीत सिंह जी हैं?
हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, तो वो क्या काम किया करते थे, क्या उनको कुछ मिला सरकार की तरफ से?
नहीं जी, हम तो पहली मजदूरी कर रहे थे, आज मजदूरी कर रहे हैं। हमारा तो ऐसे लगा लो, अगर घर भी बना हुआ है तो आप लगा लो जनता की बदौलत बना हुआ है।
और आप क्या काम करते हैं जगा जी?
मैं भी मजदूरी करता हूँ जी, और भैया भी मजदूरी करते हैं, और पापा भी जी, क्योंकि 2006 में मैडम मेरे को नौकरी का ऐलान हुआ था कांग्रेस के राज में, और उसका लेटर यहाँ पंजाब में डीसी संगरूर के पास आया हुआ, लेकिन जबकि वो सरकार बदल गई तो इन्होंने राज्यों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की।
तो नौकरी बनते बनते रह गई?
हाँ जी, वहीं पे रहेगी। अगर जहाँ पे खजाना मंत्री है जी परमिंदर सिंह जी ढींडसा, अगर उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं बादल साहब ने नहीं दी, ये तो कांग्रेस की गई, हम ये कुछ नहीं कर सकते। जब तक के इन्होंने हमारी जो नौकरियां है लोगों को औरों को दे दी, कुछ भी नहीं दिया।
उम्मीद है कि आपके साथ जरूर न्याय होगा और आपको और आपके परिवार को बहुत सम्मानित किया जाएगा।
ठीक है जी,
धन्यवाद जी,
धन्यवाद सर,
सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।